देखिए, ये मैंने छह चीजें लिखी हैं, ये छह चीजें हमारे वैल्यू डिटरमिन करने के लिए हमारे एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा होनी चाहिए। जो पहली चीज है उसको हम कहते हैं, एक टर्म है अंग्रेजी में यूज होती है जिसे कहते हैं एपिजेनेटिक फैक्टर्स। हमारे जहन में बहुत अरसे से यह बात है कि जो हम जेनेटिकली हैं ना, हम वैसे ही, जो हमारी जीन्स में जो अल्लाह ने हो लिख दिया है ना, हमने वैसे ही बनना है। किसी ने कातिल है तो वो कातिल बनना है, कोई बदमाश है तो उसने बदमाश बनना है, कोई शरीफ आदमी है तो वो शरीफ ही है, मेरी आंखों का रंग अगर नीला है तो नीला ही होगा। समहाउ हमारे जहन में भी ये बात आ गई है कि लोग अच्छे हैं, लोग बुरे हैं, कुछ लोग अच्छे होते हैं वो अच्छे ही रहते हैं, कुछ बुरे होते हैं बुरे रहते हैं। इसको हम कहते हैं जेनेटिक फैक्टर्स। लेकिन हमें मौजूदा साइंस ने और माइंड साइंस ने यह बताया है कि जेनेटिक फैक्टर से ज्यादा अहम चीज है एपिजेनेटिक फैक्टर्स, जिसका मतलब यह है कि हम उस जीन को किस एनवायरमेंट में रखते हैं। तो एक साइंसदान है जिनका नाम है ब्रूस लिप्टन, उन्होंने एक तरह के सेल्स लिए, एक सेल्स में मुवाफिक हालात रखे और एक में गैर मुवाफिक हालात रखे, हालांकि दोनों सेल एक ही तरह से थे, मगर एक सेल ने और तरीके से बिहेव किया, दूसरे सेल ने और तरीके से बिहेव किया। यही बात इंसानी जहन के बारे में है। इंसानी जहन को आप जितने मुवाफिक हालात में रखेंगे उतने उसके अंदर पॉजिटिव चेंजेस आनी शुरू हो जाएंगी। तो लिहाजा जो पहली वैल्यू सिस्टम हमारे एजुकेशन में होनी चाहिए वो ये है कि हमें इस बात पर पक्का यकीन होना चाहिए कि हमारी तरबियत के ऊपर डिपेंड करेगा कि हमारी प्रोडक्ट क्या निकलती है। किसी गरीब घर से कोई लड़का आ जाए, किसी अमीर घर में से लड़का आ जाए, कोई यानी ऐसे खानदान से आ जाए जिस खानदान में कोई तालीम का कोई वो नहीं था, या ऐसे खानदान से आ जाए जो पढ़ा, जो भी हमारे पास यानी रॉ मटेरियल आएगा, अगर हम उसके ऊपर सख्त मेहनत और तरबियत करेंगे तो उस तरबियत की चक्की से निकाल के हम इंशाअल्लाह अज़ीज एक जबरदस्त किस्म का प्रोडक्ट कर सकते हैं। लिहाजा जितने हमारे टीचर्स हैं उन तमाम टीचर्स को लेबलिंग की आदत को हटाना पड़ेगा। किसी को लेबल ना करें, किसी के बारे में जजमेंटल ना हो, और तालीम को कभी भी कंपार्टमेंटलाइज्ड ना करें। कंपार्टमेंटलाइज, गरीबों की तालीम और अमीरों की तालीम और इसके लिए और उसके लिए और। और चौथा यह है कि एनवायरमेंट को स्ट्रेस फ्री रखें। ये मैं आई विश कि मैं इस सारे पर हम एक पूरी वर्कशॉप भी करवाते हैं, लेकिन मैं आपको मुख्तसर ये अर्ज कर रहा हूं कि अगर हमारे एनवायरमेंट के अंदर बच्चों की जेनेटिक्स से हटकर उनकी तरबियत के ऊपर फोकस किया जाए, उनके बारे में हम जजमेंटल ना हो, उनको नलायक बच्चा अच्छे बच्चे में कन्वर्ट वो ना करें, तालीम को पैसे के साथ पैरेलल करके उसके उसको ना कंपेयर करें, और एनवायरमेंट को स्ट्रेस फ्री रखें, एनवायरमेंट को चैलेंज्ड रखें, मगर रखें स्ट्रेस फ्री। चैलेंज और स्ट्रेस में बहुत फर्क है। सब लोग यहां बैठे रहें, कल सुबह से पहले यहां से किसी ने नहीं जाना, अगर कोई गया तो मैं बहुत बुरा पेश आऊंगा, यह स्ट्रेस है। हमने ये काम करना है, मैं भी आपके साथ हूं, हम दो तीन दिन यहीं रहेंगे, हम खाना भी यहीं खाएंगे, मैं भी आपके साथ यहां सोता हूं, और रात को एक बजे आके यार ये तुम्हारी चाची ने पिज्जा बनाया था, मैंने कहा चलो बच्चों को मैं दे आऊं। नो, अब ये है चैलेंज दिया है आपने, और पहले आपने स्ट्रेस दिया था। दोनों सूरतों के अंदर सो तक लोग काम कर रहे हैं, मगर एक में वो नाखुश होकर कर रहे होंगे, दूसरे में खुश होकर कर रहे होंगे। तो ये मैं पहला फैक्टर है, क्योंकि हमें बात को समेटना है कि हमारे एजुकेशनल सिस्टम के अंदर जेनेटिक्स से ज्यादा एपिजेनेटिक फैक्टर्स के ऊपर काम करना चाहिए। दूसरी अहम बात यह है कि हम मेडिसिन में कहते हैं कि हर चीज एविडेंस बेस्ड होनी चाहिए। हमारी एजुकेशन अनफॉर्चुनेटली एविडेंस बेस्ड नहीं है। हम एक टीचर जो है वो पिछले 20 साल से जिस तरीके से पढ़ाई जा रहा है वो उसी तरीके से पढ़ाई जा रहा है। वो रिसर्च का डिपार्टमेंट प्राइमरी स्कूल में भी होना चाहिए, रिसर्च का डिपार्टमेंट हाई स्कूल और खैर बड़े कॉलेजों में तो होना ही चाहिए। तो जहां आप सारे और पैसे खर्च करते हैं वहां एक रिसर्च का डिपार्टमेंट होना चाहिए जो ये देखे कि जो हमारी प्रोडक्ट निकल रही है ये प्रोडक्ट किस वजह से वैसे नहीं निकल रही। इन अदर वर्ड्स, हमारी एजुकेशन को एविडेंस बेस्ड होना चाहिए। तीसरा, हमारी एजुकेशन का जो बहुत अहम एस्पेक्ट है वो ये है कि हमारे स्टूडेंट्स की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। अगर हम अपने स्टूडेंट की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो इस सिलसिले में पिछली हुकूमत ने एक दफा मार नहीं प्यार और इस तरह के कुछ स्लोगन शुरू किए थे, लेकिन मैं जो बात कर रहा हूं वो उससे बहुत ही ज्यादा बियॉन्ड है। वो ये है कि स्टूडेंट को एक एडल्ट के तौर पर पूरे एजुकेशनल सिस्टम के अंदर इन्वॉल्व करना। चौथी जो अहम बात है वो ये है कि एक कॉन्सेप्ट है इक्वालिटी का और इक्विटी का। हमारे इदारों के अंदर निजाम को इक्वालिटी के तौर पर चलाया जाता है, सबके लिए एक, जैसे वो एक जो एक मजाहिया नजम है अनवर मकसूद की कि बुनियान बुनियान लैंड जानते हो बुनियान लैके आते, उसमें एक लाइन आती है वड्डे नु भी पूरी है ते छोटे दे भी नाप दी, यानी वन साइज फिट्स ऑल। तो हमारा एजुकेशन सिस्टम है ना वो वन साइज फिट्स ऑल है, यानी इक्वालिटी पर बेस है। हमारा एजुकेशन सिस्टम इक्विटी पर बेस होना चाहिए, यानी जिसकी जो जरूरत है उसको दिया जाए। आपके क्लास में बैठे हुए सारे लड़कों को डॉक्टर बनाने की कोशिश की जा रही है या इंजीनियर बनाने की, जो बच जाते हैं वो कुछ और बनते हैं। शुरू से ही उनके साथ जो मामला है वो इक्वालिटी की बजाय उनकी सलाहियतों के मुताबिक होना चाहिए। और आखिरी बात यह है, फिर मैं इंशाल्लाह जो कंक्लूडिंग बात मैं आपसे अर्ज करूंगा, आखिरी बात यह है कि अगर आपने एक खूबसूरत सा केक बनाना है ना, और उसका शक्ल दिल की तरह की होनी चाहिए, तो जो सांचा है, जो सांचा वो केक बनाएगा, वो दिल की शक्ल का होना चाहिए। अगर वो सांचा दिल की शक्ल का नहीं होगा तो केक सही नहीं बनेगा। लिहाजा हमारे एजुकेशन सिस्टम की जो सेंट्रल बात है उसका नाम है फैकल्टी डेवलपमेंट, यानी असातज़ा की तरबियत। जिस तरीके से अच्छी नस्ल पैदा करने के लिए बच्चों की तरबियत का मेन मतलब यह है मां बाप की तरबियत। अगर हम अच्छे बच्चे पैदा करना, अच्छी कौम पैदा करना चाहते हैं तो उसका क्या मतलब है? हम कहते हैं बच्चा शरारती बहुत है, इसको कैसे ठीक करें, यह बच्चा जिद्दी है इसको कैसे ठीक करें। असल में यह है कि उसके मां बाप को कैसे ठीक करें, वो जो सांचा, जिस सांचे से बन के वो प्रोडक्ट आई है। इसी तरीके से हम जितनी भी मैंने अब तक बातें की हैं, इन तमाम बातों के लिए जो सबसे की पॉइंट है वो की पॉइंट ये है कि हमारे जो असातज़ा हैं उनकी फैकल्टी डेवलपमेंट, ये जितनी भी किरदार से रिलेटेड बातें हैं, जितनी भी रोल मॉडलिंग है, और आपको डॉक्यूमेंट इंशाल्लाह ये कैरेक्टर एजुकेशन फाउंडेशन के फोरम से मिलेगी कि जिसके अंदर ये बहुत मेहनत करके दोस्तों ने बताया है कि कौन सी वैल्यूज होनी चाहिए, कौन सी स्किल्स होनी चाहिए, खुदी से मुतल्लक क्या होना चाहिए, कौन सी आदत होनी चाहिए जो बच्चों में पैदा हों। पहले इन तमाम आदत का खूगर, इन तमाम आदत का रोल मॉडल टीचर्स को बनाना पड़ेगा। लिहाजा खास तौर पे जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं और जो लोग यानी सरकारी उसके अंदर नहीं है, उनके उनसे तो खास तौर पर, मेरा ख्याल है सरकारी भी होंगे प्राइवेट भी यहां बैठे होंगे, उनसे तो मैं आपसे जरूर ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि एक कॉमन ये बात कही जाती है कि जो हमारे असातज़ा हैं उनको लुक आफ्टर करना प्राइवेट स्कूलों कॉलेजेस के अंदर उस लेवल का नहीं होता, होता होगा बहुत ज्यादा। तो जब तक हम अपने उन टीचर्स पर इन्वेस्ट नहीं करेंगे, जब तक उनकी फिजिकल नीड्स को इन्वेस्ट नहीं करेंगे, उन पर इन्वेस्ट नहीं करेंगे, जब तक उनकी इंटेलेक्चुअल तरबियत पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे, उनकी इमोशनल तरबियत पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे, उस वक्त तक हम अपने प्रोडक्ट को कभी भी बेहतर नहीं कर सकते। जब तक आपकी मशीन प्रॉपर नहीं होगी तो उसमें जो प्रोडक्ट निकल के आएगा वो ठीक नहीं होगा। तो ये छठी बात ये थी कि किरदार की तश्कील के लिए हम अपने टीचर्स की किरदार की तश्कील और उनको इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी बनाने के लिए जो मॉडर्न मेथड है उनके लिए फैकल्टी डेवलपमेंट का कंटिन्यूस प्रोग्राम करना जरूरी है।